तरीके से इस कंप्यूटर में भी, सॉफ्टवेयर में भी, जो हम इनपुट ले रहे हैं और जो आउटपुट दे रहे हैं, दोनों ठीक चल रहे हैं तो अंदर भारी नहीं होगा। भारी कब हो रहा है? जब मेरा बीएमआर ठीक नहीं है, डाइजेशन ठीक नहीं है, लीवर वीक है, इंटेस्टाइन डाइजेस्ट नहीं कर रही है, तो वो डिपॉजिट हो रहा है। यहां भी हमारे कंप्यूटर में, सॉफ्टवेयर में, जो मैं खबर ले रहा हूं, सुन रहा हूं और उसको मैं प्रॉपर यूज नहीं कर रहा हूं, तो मैं हैवी हूंगा। इंफॉर्मेशन बहुत है, बस उस इंफॉर्मेशन को कैसे चैनलाइज करना, यूज करना, वो हमें लाइट बनाता है। इसी पर मैं शेयर करूंगा कि उन घटनाओं को, प्रॉब्लम्स को हम कैसे लाइट करें। शुरू करता हूं। एक टूरिस्ट आता है इंडिया में और वो एक योगी के पास जाता है। योगी का कमरा देखकर कहता है, आपका फर्नीचर तो केवल एक लालटेन है और मैट है, चटाई है। योगी उससे पूछता है, तुम्हारा फर्नीचर कहां है? टूरिस्ट से। टूरिस्ट कहता है, मेरा फर्नीचर नहीं है, मैं तो टूरिस्ट हूं। योगी कहता है, मैं भी टूरिस्ट हूं। हम सब यहां टूरिस्ट हैं और इस जर्नी में कहीं ना कहीं हम अनवांटेड बैगेज ले लेते हैं। कभी कभी हम लोग देखते हैं जर्नी में कई लोग बहुत बैगेज लेकर चलते हैं, खुद को तकलीफ होती है और दूसरों को भी होती है। इसीलिए आजकल लिखा हुआ है ट्रेवल लाइट। जितना लाइट जर्नी करेंगे उतना बाहर जल्दी आ जाएंगे। मैं कभी कभी देखता हूं अच्छे जो टूरिस्ट रहते हैं, फ्रीक्वेंट जर्नी करते हैं, एक छोटा बैग लेकर चलते हैं, अंदर जाते हैं और बाहर आ जाते हैं। दूसरे लोग वेट करते रहते हैं कब उनका बैगेज बाहर आए और तब जाए। तो ये सेम प्रॉब्लम हमारे अंदर भी हो रहा है, हमारे सॉफ्टवेयर में भी हो रहा है। कहीं हम उस चीजों को अगर बहुत रख लेते हैं तो टूरिस्ट का अर्थ है जर्नी विथ जर्नी लाइट। हम अपनी जर्नी को लाइट से लाइट बनाएं। अब दो शब्द हैं, अर्ली एंड लेट। अब पूरा गेम इन दो शब्दों में हो रहा है। हम सपने बहुत जल्दी ड्रीम करना शुरू करते हैं पर एक्ट करने में लेट कर देते हैं। अच्छी चीज है ड्रीम करना पर कभी कभी हम उनको एक्ट नहीं कर पाते हैं। फिर है हम लोगों पर विश्वास कर लेते हैं बहुत जल्दी पर उनको माफ करने में बहुत देरी लगा देते हैं, सालों निकल जाते हैं। हम गुस्सा जल्दी कर देते हैं और फिर माफी मांगना बहुत देरी से कर देते हैं। हम गिव अप जल्दी कर देते हैं पर रीस्टार्ट करने में देरी लगा देते हैं। हम क्राई करते हैं बहुत जल्दी, कंप्लेन करते हैं पर खुश रहने में देरी लगा देते हैं। इसीलिए क्या करना है, हमें परिवर्तन जल्दी करना है, नहीं तो क्या होगा, टू लेट हो जाएगा। और यही ब्रह्म कुमारी का मैसेज है कि अपने में परिवर्तन लाओ तो जो आने वाला समय है वो हमें बेटर रहेगा, आगे बढ़ेगा। ये मुझे बड़ा अच्छा लगता है, पूरे लेक्चर का मैसेज है। जीवन एक सेलिब्रेशन है, चांसेस लो, सच्चाई से बोलो, कुछ चीजों को मना करो, मनी वहां जरूर खर्चा करो जहां जरूरी है। ये एक मेजर प्रॉब्लम हमने देखा, कभी कभी व्यक्ति इतना खो जाता है, चाहे वो सेविंग करना चाहता है, बच्चों के लिए चाहता है, अपने ऊपर वो खर्चा ही नहीं करता है। तो जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो उसकी हो नहीं पाती है। तो जहां जरूरी है उसको खर्चा करो। एक बार ट्रेन में आ रहा था, एसी कोच था, हस्बैंड वाइफ ट्रेन में चढ़े, उनको चाय पीनी थी, गाड़ी चल दी, एक स्टेशन आया, वो उतरा, फिर गाड़ी स्टार्ट हो गई, वापस बैठ गया, कोच में एक चाय वाला आया, उसने पूछा कितने की चाय, उसने वेंडर ने कहा 5 रुपए की, उसने जो हस्बैंड वाइफ थे बैठे हुए थे, हस्बैंड ने कहा स्टेशन में चाय तो 4 रुपए, ये काफी साल पहले की बात है, और तू तो 5 रुपए में दे रहा है। 10 मिनट तक उससे आर्ग्यू करता रहा, चाय 5 रुपए, चाय 4 रुपए, तेरा कप छोटा वहां कप बड़ा। अब मैं देख रहा था 10 मिनट तक वो 1 रुपए के पीछे आर्ग्यू करता रहा, चाय 5 रुपए। जैसे ही ये गया एड्रिनल निकला, हमारे 2 पंप लगे हुए हैं एड्रिनल पंप किडनी के ऊपर, वो मैसेजेस को कैच करते हैं। जैसे ही मैंने कहा चाय 5 रुपए कप छोटा, अब 10-15 मिनट उसने बिना कारण से एड्रिनल को छोड़ा। अब वही एड्रिनल बॉडी में कहीं डैमेज करेगी, बाद में डॉक्टर को 1.5 लाख रुपए एंजियोप्लास्टी के दे देगा। इससे अच्छा 1 रुपए देकर प्रॉब्लम को सॉल्व करता। तो जहां जरूरत है इकोनॉमी को चलने दो। इकोनॉमी जितना चलेगी बेटर ग्रोथ होगी। हम लोग भी ऐसे ही करते थे, मैंने सीखा जब पहली बार अमेरिका गया, हर चीज को कंपेयर कर रहा था, इंडिया में कितने का है, यूएस डॉलर 20 है तो इंडिया में कितना है, फिर सोचता था नहीं खरीदना वहीं ठीक है इंडिया में। मेरे साथ ब्रदर थे, बोला कुछ नहीं खरीद ले, जो खरीदना है खरीद ले, खरीदेगा तो इकोनॉमी चलेगी। तो हम वहां दिमाग नहीं लगाएं जहां फ्लो का प्रिंसिपल है। मैंने लक्ष्मी का उस दिन भी बताया कि जितना फ्लो होगा उतना हमारा ग्रोथ होगा। तो डांस करो जब जरूरत है, अपने में खो जाओ, बाथरूम में जाकर गाना गाओ जब गाने की इच्छा है, वीक में एक बार वो करो जो अच्छा लगता है, कुछ ऐसे पिक्चर लो जिसमें आप डिफरेंट लग रहे हैं, और आजकल लोग लेते हैं और भेज देते हैं, तो वो अच्छी चीज है, क्योंकि वही मेमोरी बाद में काम में आएगी। हम एकदम टाइट नहीं हो जाएं, एकदम हम कंप्रेस नहीं हो जाएं, और वही मेजर प्रॉब्लम है, हम लाइट नहीं रहते हैं, क्योंकि हम कहीं ना कहीं भारी हो जाते हैं। लाइफ इज अ गेम ऑफ 4 R, रोल, रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिलेशनशिप, रिसोर्सेस। सबसे इंपॉर्टेंट R है लाइफ का क्या है, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट R, रिस्पॉन्सिबिलिटी, और विच इज आउट ऑफ 4, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट R। पूरा लाइफ इन 4 R के अंदर घूम रहा है। सेल्फ मैनेजमेंट, आउट ऑफ 4 विच इज द इंपॉर्टेंट R, आपने पहला लेसन भी यहां सुना समझा, मैं एक यूनिक सोल हूं, मेरा रोल इंपॉर्टेंट है। अगर मेरा रोल क्लियर है तो बाकी 3 एरिया भी मेरे ठीक रहेंगे। चारों इंटरकनेक्टेड हैं, ऑल 4 आर इंटरकनेक्टेड, बट माय रोल इज इम्पॉर्टेंट। ज्यादातर न्यूरोटिक प्रॉब्लम साइकोटिक प्रॉब्लम यहां से शुरू होते हैं जब रोल क्लियरिटी नहीं है। ऑर्गेनाइजेशन में भी प्रॉब्लम वहां शुरू होते हैं जो व्यक्ति काम कर रहा है उसको क्या करना है वही क्लियर नहीं है। ऑर्गेनाइजेशन का गोल क्या है, उस व्यक्ति का गोल क्या है, मैच नहीं कर रहा है तो स्ट्रेस आएगा। सो माय रोल इज मोर इम्पॉर्टेंट एंड वंस आई एम क्लियर हियर मेरे तीन एरिया भी मेरे ठीक रहेंगे। अब आप देख रहे हैं एक पिक्चर, पिक्चर में क्या देख रहे हैं, एक पलंग है उस पर पूरी फैमिली सो रही है, एनिमल भी उनके पैट डॉग भी सो रहा है, रेन हो रहे हैं, छतरा लेकर बैठे हैं। क्या मैसेज देना चाहता हूं, पिक्चर का मैसेज क्या है, सब खुश रहो और सेटिस्फाई। और कई लोग कहते हैं सेटिस्फेक्शन अच्छा नहीं है, अगर सेटिस्फाई हो जाएंगे तो आगे कैसे बढ़ेंगे, रिलैक्स हैं, एडजस्टमेंट कर रहे हैं और हैप्पीनेस इन लिमिटेशन और छोटा परिवार सुखी परिवार, गुड, वेरी गुड वेरी गुड। जितने भी रिसोर्सेस हैं उसके पास उसका वो यूज कर रहा है, जो अवेलेबल रिसोर्सेस हैं उनको वो चैनलाइज कर रहा है और जो रिसोर्सेस नहीं है उसके पास उसको अभी उसने रोका हुआ है। लाइफ में भी हर समय हर रिसोर्सेस अवेलेबल नहीं रहता, रिसोर्सेस को हमें ही क्रिएट करना पड़ता है, जीरो से चलना पड़ता है। और उस दिन भी बताया मैंने एक नरेंद्र रावल का जो केन्या का था, जीरो से गया और टॉप पर गया, रिसोर्सेस को क्रिएट करता गया। और जितना हम रिसोर्सेस को क्रिएट करते हैं ग्रोथ नेचुरल होती है। इसीलिए हैप्पी पीपुल फोकस ऑन व्हाट दे हैव, अनहैप्पी पीपुल फोकस ऑन जो मेरे पास नहीं है। ज्यादातर हम लोगों का भी प्रॉब्लम यही है, जो नहीं है उसकी हम बार बार रिवाइज करते रहते हैं और जो है उसको हम देखते नहीं है। हस्बैंड वाइफ बच्चा जॉब घर कार जो भी मेरे पास इस समय है बहुत अच्छा है, मारुति कार है, सेकंड हैंड है, बहुत अच्छा है। अगर मैं कहूं मेरे को ये कार पसंद नहीं आती, जब तक मेरे पास वो कार नहीं आएगी मैं खुश नहीं होऊंगा, तो परमात्मा क्या करेगा, मेरे को ये कार पसंद नहीं है, ऊपर वाला सुनता है, वो सुन लेता है गलती से इसको कार पसंद ही नहीं है, तो वो नेक्स्ट कार देगा ही नहीं। उसको बोलो बहुत अच्छी लगती है, वेरी गुड आई लव यू, उसको रोज साफ करो चमकाओ, तब ऊपर वाला सोचता है इसको और कुछ बेटर दूं। तो हमेशा जो मेरे पास है वो बहुत अच्छा है, जहां पैदा हुआ हूं बहुत अच्छा है, जो जॉब है वो भी अच्छा है। तो तनाव का कारण क्या है, स्ट्रेस इज अ मिसमैच बिटवीन डिमांड एंड रिसोर्सेस। तनाव का कारण है कि डिमांड ज्यादा है रिसोर्सेस कम है, और डिमांड हमेशा बनी रहती है, हमें रिसोर्सेस को आगे बढ़ाना पड़ता है। डिमांड एक बाहर की डिमांड है, एक इंटरनल डिमांड है। इंटरनल डिमांड को हमें ठीक रखना है, साइकोलॉजिकल डिमांड को हमें ठीक रखना है। स्ट्रेस का एक और कारण है, एक और डेफिनेशन है, साइकोलॉजी हमारी डिमांड करती है, मन हमारा डिमांड करता है और हमारा प्रोडक्शन हमारे थॉट्स देते हैं, दोनों का इंटरलिंक है। कई लोग स्ट्रेस को दूसरों को देते हैं, ट्रांसमिट कर देते हैं, और कई लोग स्ट्रेस को शेयर करते हैं, और कई लोग स्ट्रेस की जगह खुशी पैदा करते हैं। हमें क्या करना है, अगर मेरे को तनाव है स्ट्रेस है तो दूसरे को ट्रांसमिट न करूं, ज्यादातर हम क्या करते हैं, ट्रांसमिट करते हैं। मेरे को प्रॉब्लम है तो मैं देख रहा हूं सब लोग खुश हैं, मुस्कुरा रहे हैं, तो मेरे को मजा नहीं आएगा। मैं क्या करूंगा, धीरे धीरे उसको ट्रांसफर करूंगा और हरेक का चेहरा डाउन हो जाएगा तब मुझे ठीक लगेगा। तो हमें खुशी को ट्रांसफर करना है, स्ट्रेस को नहीं। चलिए खड़े हो जाएं, मुस्कुराएगा।
तेरी जिंदगी में यूं तो कई दर्द आएंगे,
दर्द आएंगे,
अगर मुस्कुराएगा, अगर मुस्कुराएगा तो दर्द भाग जाएंगे,
भाग जाएंगे।
अरे मुस्कुराए जा, हर घड़ी है एक इम्तिहान, संभलते सब यहाँ, बहादुरों का ही है ये जहाँ, हर एक हाल में किसी भी चाल में हिम्मत न हार, मुस्कुराए जा। हिम्मत न हार, मुस्कुराए जा।
तो हमें मिस मैच को ठीक करना है, जो मैच नहीं हो रहा है उसको ठीक करना है। प्रॉब्लम तनाव का एक कारण होता है, हर समय हम मैचिंग चाहते हैं, हर समय मैचिंग पॉसिबल नहीं है। चाहे कितने भी हम एस्ट्रोलॉजर के पास जाएं, मैचिंग करें, कहीं ना कहीं तो प्रॉब्लम आएगा। कोई 100% मैचिंग दे नहीं सकता, मैचिंग अंदर संस्कारों की चाहिए। अगर संस्कार मैच कर रहे हैं तो पॉसिबल है ग्रोथ होती रहती है। तो खुशी को हम बांटें, उस रिसोर्सेस को मैनेज करें। दूसरा कारण है जो मैं समझता हूं हम लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है, और वो है मैं क्या हूं और मैं क्या दिखा रहा हूं। व्हाट आई एम एंड व्हाट आई प्रटेंड टू व्हाट आई एम। उस दिन भी बताया मास्क पर्सनालिटी। ज्यादातर हम लोग मास्क पहनकर अपना जीना जीते हैं और उसमें कहीं भी प्रॉब्लम आ सकता है। मैं क्या हूं और मैं क्या अपने को दिखा रहा हूं, दोनों को ठीक करें। अल्टीमेटली मैं जो हूं वो बहुत अच्छा हूं। मुझे बहुत एक अच्छा याद आया, लॉर्ड गौतम बुद्धा अपने डिसाइपल्स के पास जा रहे थे सुबह, साथ में उनकी एक रस्सी थी, वो जाकर बैठ गए और रस्सी में तीन गठाने बांध दी और उन्होंने पूछा ये क्या है। उन्होंने कहा रस्सी है और गठाने हैं, गठानों को कैसे खोलें। वो रस्सी को खींचने लगे दोनों तरफ से, बोला क्या होगा, बोला और डिटोरिएट हो जाएंगे, टाइट हो जाएंगे। पर बोला ये गठाने के बाद रस्सी वही है जो पहले थी। उन्होंने कहा रस्सी तो बेसिकली वही है पर गठाने बाहर से क्रिएट कर दिए। इसी तरीके से हमारे अंदर भी आत्मा तो सेम है पर उसमें जो गठाने आ गई है वो हमारी एक्वायर्ड पर्सनालिटी है। उन्होंने फिर सेकंड पूछा कैसे खोलें इसको। उन्होंने कहा कि पहले देखना पड़ेगा किस तरह की गठान है, तब उसको प्रॉपर खोल सकते हैं। लॉर्ड गौतम बुद्धा ने कहा यही प्रॉब्लम है, लोग मेरे पास आते हैं और कहते हैं मेरे को क्रोध बहुत आता है, मैं क्रोध को कैसे छोड़ूं। लॉर्ड गौतम बुद्धा ने कहा गठाने वही हैं, अहंकार क्रोध की गठाने हैं, पर अगर उसको प्रॉपर खोलना है तो मुझे समझना पड़ेगा कि मेरे को क्रोध क्यों आ रहा है। आइडेंटिफाई द सोर्स, मेरा कारण क्रोध का अहंकार का क्या है। केवल मैं कहूं अहंकार नहीं आना चाहिए, क्रोध नहीं आना चाहिए, वो आता रहेगा क्योंकि मैं उसकी जड़ में नहीं जा रहा हूं उसका कारण क्या है। तो प्रॉब्लम भी जब हमारे जिंदगी में आते हैं हमें ये देखना पड़ता है कि उसका सोर्स क्या है, उसका कारण क्या है। और अगर हम कारण को देखेंगे तो उसको रेक्टिफाई कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। केवल कहने से वो ठीक नहीं होगा। तो जो मेरा ओरिजिनल नेचर है उसमें मुझे टिक कर मुझे वो उसको ठीक करना पड़ेगा। और इसीलिए आपने देखा यहां का बेसिक लेसन वही है कि मैं एक प्योर सोल हूं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं नेगेटिव सोल हूं, मेरे में बहुत अवगुण है। मैं ये कह रहा हूं कि मैं पॉजिटिव आत्मा हूं, अनादि आत्मा हूं, मेरे में क्वालिटीज हैं। जब हम अपनी क्वालिटीज को देखेंगे तो हम लाइट होते जाएंगे। जब हम नेगेटिव को देखेंगे, एंगर को देखेंगे, अहंकार को देखेंगे तो भारी होंगे। इसीलिए बार बार उस अनादि में टिकना ही लाइट होना है। उस समय में कोई भी अनवांटेड नेगेटिव डिस्क्रिप्शन अपने को नहीं दूं। दूसरा है क्या हो रहा है और क्या होने वाला है, इसका डिस्क्रिप्शन मैंने फर्स्ट लेक्चर में दिया था। अब नेक्स्ट है, एक मॉन्क है, वो एक वेसल को लेकर जा रहा है। उस वेसल की खूबी थी कि वो कभी नहीं भरता। राजा ने कहा मैं इसको भर दूंगा। राजा ने बड़ी कोशिश की उसमें भरने की, पर भरा नहीं। मॉन्क ने कहा ये ह्यूमन स्कल है, ये कभी नहीं भरता। हमारा मन भी क्या है, वो कभी भी फुलफिल नहीं होता, उसको कुछ ना कुछ और चाहिए ही रहता है। इसीलिए हमें देखना पड़ता है कि मेरे अंदर क्या है और मेरे अंदर की चाहना क्या है, दोनों को देखना पड़ता है। पर इस समय मेरी जो चाहना है उसको देखकर मुझे आगे बढ़ना पड़ता है। मैं स्टोरी से क्लियर करूंगा। बॉम्बे से एक बिजनेसमैन गोवा जाता है। गोवा उतरते हुए देखता है एक फिशरमैन पेड़ के नीचे गाना गा रहा है, एंजॉय कर रहा है। बिजनेसमैन ने फिश लेकर टेस्ट किया, बोला बहुत अच्छी है, तुम इतना जल्दी क्यों आ गए और वहां रहते? तो फिशरमैन ने कहा मेरे को जितना चाहिए था उतना दिन भर के लिए सफिशिएंट है, इतना ही मेरे पूरे दिन भर के लिए ठीक है। बिजनेसमैन ने कहा अगर तुम जाओगे और पकड़ोगे तो? फिशरमैन ने कहा क्या होगा? उसने कहा तुम अपना नेट खरीद सकते हो, फिर क्या होगा? फिर अपना शिप खरीद सकते हो, फिर क्या होगा? बॉम्बे आ जाना, फैक्ट्री डाल देना, फिर क्या होगा? बोला फिर शेयर मार्केट में लगाना। फिशरमैन ने कहा ये सब कितने समय में होगा? उसने कहा 25-30 साल लग जाएंगे। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद क्या, गांव में आकर अपना मकान बनाना और मकान के बाद अपने दोस्तों से बात करना, गाना गाना। फिशरमैन ने कहा वो तो मैं अभी कर रहा हूं। तो कभी कभी हम अपनी सेटिस्फेक्शन को, डिजायर को कंफ्यूजन में कर देते हैं। मेरे को कहां तक जाना है, क्यों जाना है, वो क्लियर होना चाहिए। और हरेक की कैपेसिटी अलग अलग है, कहां तक जाना है, क्यों जाना है। और इसीलिए स्ट्रेस का एक कारण होता जा रहा है, हरेक की अपेक्षाएं खुद से, बच्चों से, दूसरों से बढ़ती जा रही है और उसके कारण मिसमैच हो रहा है और प्रॉब्लम आ रहा है। नेक्स्ट है, कभी कभी हम बहुत सोचते हैं पर कर नहीं पाते। कभी कभी हम कर देते हैं बिना सोचकर कर देते हैं। दोनों में क्या हो रहा है? कहीं ना कहीं हम प्रॉब्लम में आ जाते हैं। अब नेक्स्ट स्टोरी, थोड़ा ये डीपर लेवल की स्टोरी है। एक प्रोफेसर है, उसको प्रॉब्लम आया, बहुत स्ट्रेस था। वो अपने जैन मास्टर के पास जाता है, जैन मास्टर को प्रॉब्लम बताता है। मास्टर प्रॉब्लम सुनकर उसको कहता है चलो वॉक करेंगे। वो दोनों वॉक करना शुरू करते हैं। मास्टर ने एक ग्लास पानी और एक चम्मच नमक का ले लिया। वॉक करते करते मास्टर ने कहा प्रोफेसर को एक चम्मच नमक ग्लास में मिला दो। मिलाने के बाद बोला पियो। कैसा लग रहा है? खराब लग रहा है। आगे चलकर मास्टर ने कहा एक चम्मच नमक झील में मिला दो। अब पानी पियो। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, कुछ खराब नहीं लग रहा है। मास्टर उसको क्या कहना चाहता था, क्या मैसेज उसको दे रहा था प्रोफेसर को? एक चम्मच नमक, ग्लास ऑफ वाटर, लेक। जब ग्लास में मिलाया अच्छा नहीं लगा, लेक में मिलाया अच्छा लगा. व्हाट वॉज द मैसेज? हाँ, और हाँ, अपने आप को इतना बड़ा कर लो. अपने आप को बड़ा करना यानी हनुमान जैसा बड़ा नहीं करना, अपनी सोच को, अपनी एटीट्यूड को, अपने सॉफ्टवेयर की कैपेसिटी को बड़ा कर दो. जो मैंने बताया थॉट्स, इमोशन, एटीट्यूड, मेमोरी, इसको हम बड़ा कर देते हैं, फॉरसाइटेड कर देते हैं, विशाल कर देते हैं, तो प्रॉब्लम छोटा हो जाता है. प्रॉब्लम लाइफ की निशानी है. अगर कुछ करेंगे तो प्रॉब्लम तो आना है, पर हमें उसको मैनेज करना आना चाहिए. तो अगर हम अपनी थिंकिंग को चेंज करते हैं, परिवर्तन करते हैं, जो वर्ड बिजनेस इंडस्ट्री ने यूज किया इस बार, मेटामॉर्फोसिस करते हैं, तो प्रॉब्लम कम होगा. मेटामॉर्फोसिस का अर्थ ही है ग्रोथ फॉर बेटरमेंट. मैं नेक्स्ट स्टेज पर जा रहा हूं जहां मेरे को अपनी फ्रीडम रहेगी, उड़ सकूंगा, और वो तभी आएगा जब हम अपनी सोच को बड़ा कर देते हैं. अहंकार व्यक्ति को दबा देता है, ईगो व्यक्ति को खत्म कर देता है, सप्रेस कर देता है. बहुत अच्छा जैन मुनि ने कहा, जन्म दूसरे ने दिया, नाम दूसरे ने दिया, शिक्षा दूसरे ने दी, रिश्ता दूसरे ने जोड़ा, काम करना भी दूसरे ने सिखाया, अंत में शमशान भी दूसरे ले जाएंगे. तुम्हारा इस संसार में है क्या जो तुम घमंड कर रहे हो? बेसिकली जब आते हैं जीरो आते हैं, जाते हैं जीरो जाते हैं. इस बीच में जो हम एक्यूमुलेशन कर लेते हैं, वही हमें कहीं ना कहीं अगर तकलीफ देता है. जीवन न भविष्य में है, न अतीत में है, केवल इस पल में है. इस पल का अनुभव ही जीवन है. जो मैंने घूम फिर कर सीखा, केवल ये सेकंड मेरे हाथ में है, बाकी मेरे हाथ में नहीं है. ये सेकंड को मैं ठीक करता हूं, नेक्स्ट सेकंड भी मेरा ठीक होगा. थोड़ा प्लानिंग चाहिए रहता है, पर उस प्लानिंग के कारण हम गोल ओरिएंटेड नहीं हो जाएं, गोल गाइडेड बने. गोल हमें गाइड करे, पर गोल के कारण भी हमारा स्ट्रेस नहीं आ जाए. अब एक नेक्स्ट जो साइकोलॉजिकल कारण है, डीप न्यूरोटिक प्रॉब्लम जो आते हैं व्यक्ति में, उसका कारण होता है कि कहीं ना कहीं उसकी खुद की पर्सनालिटी में लो सेल्फ स्टीम है. जितना भी मैंने प्रॉब्लम देखे, उसका मेजर कारण देखा, कहीं ना कहीं वो व्यक्ति के अंदर अपने प्रति इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, लो फीलिंग है. अपने को वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, अपने को वर्थलेस फील कर रहा है, और उसी के कारण तरह तरह के प्रॉब्लम आते हैं. वो कभी भी हम फील नहीं करें, उसको ठीक करें. और आप देख रहे हैं, जब ऑनरेबल प्रेसिडेंट यूएसए के आए थे, पूजा ठाकुर ने पूरा कमांड किया था. उससे पूछा गया था कि आप नर्वस तो नहीं थे उस समय, फर्स्ट टाइम परेड को आप कमांड कर रहे थे? उसने कहा, मैं केवल देख रही थी मूवमेंट्स मेरी क्या है, मेरा खुद का कमांड क्या है, मैं वो देख रही थी. जब हमारा फोकस खुद पर हो जाता है, तो वो कमांड और कंट्रोल हमारा आ जाता है, और नर्वसनेस कम होती है. ज्यादातर बच्चे जब वाइवा एग्जाम देने जाते हैं, इंटरव्यू देने जाते हैं, अगर उनका फोकस बहुत ज्यादा खुद पर न रहकर उस व्यक्ति पर रहता है तो नर्वसनेस आ जाता है। इसीलिए जाने के पहले, एग्जाम जाने के पहले, इंटरव्यू देने के पहले, वाइवा देने के पहले, पहले खुद को देखें, ब्रीद आउट करें, सांस को छोड़ें, खुद को कहें ठीक हूं, और फिर जाकर उस एग्जाम को, इंटरव्यू को देखें, उसकी आंखों में ही देखें, आई टू आई कांटेक्ट करके देखें, पर फोकस खुद पर रहे, तो वो फियर जो है वो नहीं आएगा। कोई भी व्यक्ति जो एग्जाम लेता है, इंटरव्यू लेता है, वो कभी भी नेगेटिव नहीं होता, मेजॉरिटी वो लोग पॉजिटिव होते हैं, पर उनका जो तरीका रहता है वो डिफरेंट रहता है, हमें उसको समझकर आगे बढ़ना पड़ता है। जब तक हम अपने पोटेंशियल्स का 100% यूज नहीं करते, हमारे में हैवीनेस रहता है। अगर मैं अपने पोटेंशियल्स का 100% यूज कर रहा हूं तो मैं लाइट रहूंगा। जो भी मेरे अंदर ताकत है, पोटेंशियल है, पावर है, उसका 100% यूज करो। अगर वो यूज होगा तो वो बेटर होगा। और आप देख रहे हैं बहन को जी टीवी पर बहुत पॉपुलर हुई, एक पांव नहीं था, फिर भी एक पांव पर उसने डांस करके काफी अवार्ड जीते, डिमांड आई। उसने ये देखा कि मेरे पास एक पांव है, उसका मैं 100% यूज करूं, और जो नहीं है उसको मैं देखूं नहीं। यही गेम जीतना है और यही गेम हारना है। यही हम लाइट होते हैं, यही हम हेवी होते हैं। और अगर ये समझ लिया कि मेरे जो पोटेंशियल्स हैं उसको मैं 100% यूज करूंगा तो बेटर हो जाता हूं। खुश रहिए उन लोगों के सामने भी जो आपको पसंद नहीं करते। उस समय अगर हम उन लोगों के सामने डाउन हो जाते हैं, चेहरा डाउन कर देते हैं, उनको और अच्छा लगता है। जो व्यक्ति मेरे ऊपर गुस्सा कर रहा है, रिमार्क कर रहा है, क्रिटिसाइज कर रहा है, अंदर ही अंदर मैं चेहरे को खुशनुमा बना के रखूं। इससे क्या होगा? इट विल किल देम। वो गुस्सा इसीलिए कर रहा है, क्रिटिसाइज इसीलिए कर रहा है आपको डाउन करने के लिए। और अगर मैं डाउन हो गया तो उसको और मजा आएगा। और लोग क्यों करते हैं, ये क्यों करते हैं, क्रिटिसाइज क्यों करते हैं, गुस्सा क्यों करते हैं, क्या कारण है, कमेंट क्यों देते हैं, फ्रस्ट्रेशन और जेलसी, और जेलसी क्यों आई उनमें, जब वो लोग हमारी लेवल तक पहुंच नहीं सकते तब उनमें इंफीरियरिटी आती है, और तभी वो लोग टांग खींचने की कोशिश करते हैं। अपनी लेवल को हमें मेंटेन रखना है, उनके कारण हमें नीचा नहीं लाना है। वो हमारी लेवल तक पहुंच नहीं पा रहे हैं, वो चीज कर नहीं पा रहे हैं जो मैं कर सकता हूं, तो उसको मेंटेन रखो। किसी ने मधुमक्खी से पूछा, हनीबी से पूछा, लोग तेरा शहद ले जाते हैं, इतनी मेहनत करती है, तेरे को गुस्सा नहीं आता? मधुमक्खी ने कहा, वो कभी शहद ले जाते हैं, बहुत अच्छी बात है, पर कभी ये वो जान नहीं पाएंगे कि मैं कैसे शहद को प्रोसेस करती हूं, हनी कैसे मैं क्रिएट करती हूं अपने अंदर, वो किसी को पता नहीं रहेगा। इसीलिए अपनी यूनिकनेस को बनाकर रखें, उस प्रोसेसर को ठीक रखें। क्रोध में कभी भी जवाब नहीं देना, बहुत खुश हो तो कभी वायदा न करना, और दुखी हो तो कभी भी फैसला नहीं करना, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आता है। कंपटीशन खुद से करना है, दूसरों से नहीं करना। मेरी कंपटीशन खुद से है, दूसरों से नहीं है। खुद की क्वालिटी को इम्प्रूव करते रहूं, अपडेट करते रहूं, डिमांड आती रहेगी। जितनी मेरी क्वालिटी अच्छी होगी किसी भी फील्ड में, उस फील्ड का मैं मास्टर बनते आगे चलूंगा। अब एक कारण है भारी होने का, हम दूसरों को बिना कारण जज करते हैं। हमारा शायद प्रोसेसर कंप्यूटर चलता ही नहीं जब तक हम किसी को जज नहीं करें। एक सिंपल स्टोरी है, एक कपल पति पत्नी एक नए नेबरहुड में रहने आए। रोज पत्नी बाहर देखती थी खिड़की के बाहर, पड़ोसी के यहां कपड़े टंगे हुए हैं, और पति को बोलती थी कितने खराब कपड़े टंगे हुए हैं, उसको धोना ही नहीं आता। एक महीना हो गया, रोज कहती थी कपड़े खराब हैं, साबुन यूज करना नहीं आता, प्रॉपर नहीं है, पति रोज सुनता था। एक महीने बाद बोला कितने अच्छे कपड़े धुले हुए हैं, उसको कपड़े धोना आ गया। पति ने कहा आज सुबह उठकर मैंने खिड़की के कांच को साफ कर दिया। अब वो क्या हो रही थी, लेडी बिना कारण भारी हो रही थी, उसको ये पता नहीं था कौन से कांच से देख रही है। हमें भी क्या करना है, रोज अपने कांच को साफ करना है, मन रूपी कांच को, मिरर को रोज साफ करना है। यही बहनें सिखा रही हैं कि रोज सुबह उठकर अपने मिरर को साफ करो, रोज अपने कंप्यूटर को खोल दो, ओपन अप करो। जब हम इसको ओपन अप करते हैं, मेमोरी डाटा बढ़ता जाता है और हमारा क्रिटिसिज्म का एंगल कम होता। चलिए खड़े हो जाएं। बजाइए कोई अच्छा जिंदगी प्यार का गीत। last 10 minutes. जो मैंने एक इम्पोर्टेंट बात सीखी, लाइफ में दो एरिया हैं, या तो मकसद को हम क्रिएट करें, और कभी कभी मकसद हमारे पास नेचुरल आता है। क्वेश्चन ये रहता है, मकसद क्रिएट करें कि वेट करें कब आएगा। हर एक के अंदर एक मिशन छिपा हुआ है, वो मिशन हम सभी के अंदर जेनेटिकली अंदर है। अगर वो मिशन को हम बाहर ले आते हैं, हमारी लाइफ लाइट हो जाती है। पूरा गेम ही है उस मिशन को आइडेंटिफाई करना और बाहर लाना, और वो एक बार आ गया तो फ्लो चालू हो जाता। मदर टेरेसा आई, एक मिशन लिया और उसका इंग्रेडिएंट था प्यार, लव। मुझे प्यार करना है, देना है, और उस एक फैक्टर के कारण नोबल लॉरिएट बन गए। एक मिशन को अगर हम सक्सेस कर देते हैं, यूज कर देते हैं, मैं कहूंगा यूज करना, तो वो हमें ताकत देता है, और हरेक के अंदर वो है। इसीलिए कई बार देखता हूं कई डॉक्टर इंजीनियर कुछ समय के बाद वो करना चाहते हैं जो उनको अच्छा लगता है। वो क्यों आता है अंदर? मेडिकल में बहुत अच्छे सेटल थे, अब सडनली आ गया मुझे वो करना है, और छोड़ देते हैं मेडिकल प्रैक्टिस और वो करना शुरू करते हैं। ये इसलिए आता है कि हरेक के अंदर वो इंग्रेडिएंट जेनेटिकली अंदर है, और वो आ जाता है तो हमारे स्ट्रेसेस तनाव कम हो जाते हैं। और हम देख रहे हैं, मार्क फेसबुक को बनाया, रशिया से आए, बनाया, क्रिएट किया, और फिर व्हाट्सएप का डील किया, और वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट डील हुआ, 19 बिलियन से ज्यादा फेसबुक और ब्रायन का। ब्रायन भी रशिया से आया, यूक्रेन से आया, और तरह तरह के जॉब किए, फिर सडनली आया व्हाट्सएप बनाया, और दोनों का डील हुआ, और दोनों ने एक नया स्ट्रक्चर खड़ा किया। मैं सोच रहा था ये क्यों आ गया, कहां से आ गया? पढ़ाई, एजुकेशन हम लोग भी कर रहे हैं, हमारे बच्चे भी कर रहे हैं, ये लोग भी करते हैं, पर ये सडन फ्लशिंग क्यों आ जाता है? सडन फ्लशिंग तब आता है जब हम अपनी बाहर की बाउंड्रीज को क्रॉस करते हैं, जब हम मन और बुद्धि के ऊपर उठकर काम करना शुरू करते हैं। वही मेटामॉर्फोसिस है कि हम अपनी उन नेगेटिव प्रोग्रामिंग से ऊपर उठकर काम कर रहे हैं। ज्यादातर व्यक्ति की लाइफ अपनी उन नेगेटिव प्रोग्राम्स को ठीक करने में ही चली जाती है, जो बचपन से उसके अंदर आ गई, और वो उसी जोन में कंफर्टेबल रहता है, कंफर्ट जोन क्रिएट कर देता है, और उसी कंफर्ट जोन में वो जीता है। पर जब तक मेटामॉर्फोसिस नहीं होगा, अनकंफर्टेबल नहीं बनेगा, तो वो नया क्रिएट नहीं कर सकता। किसी ने उससे पूछा, मुझे बड़ा अच्छा लगा, कि आप एक कलर की ही जर्सी ज्यादातर पहनते हो, क्यों? उसने कहा, मार्केट जाता हूं, एक कलर की उठाकर ले आता हूं, मेरा टाइम वेस्ट नहीं होता, मैं अपना बाकी का टाइम अपनी प्रोडक्टिविटी पर लगाता हूं, और वो टाइम मेरा वेस्ट नहीं होता। उस दिन भी कहा मैंने, और यही मेजर फैक्टर है, लर्न टू से नो। उन एरिया में जहां प्रोडक्टिविटी मेरे को लग रहा है काम का नहीं है। मैंने एग्जांपल दिया था, किसका दिया था मैंने एग्जांपल, देखें किसको याद है। फर्स्ट डे पर सैटरडे को मैंने एग्जांपल दिया था, किसका? और किसका दिया था? टाटा नहीं दिखाया था, नहीं उसके बाद दिया था, वो पहला था, उसके बाद दिया था। वो एग्जांपल केवल एक उसके ऊपर था, धीरू भाई अंबानी का था कि हमें चलते रहना है। नहीं देखो, जो राइट आंसर दे देगा मैं अपनी बुक उसको गिफ्ट देता हूं। मैंने बताया भी, उस पर चला मैं, 4 मिनट चला, सब आ गए आपके आंसर पर, वो नहीं आया। नहीं नहीं नहीं, नहीं मैंने नहीं दिया था। वो और किसी ने दिया होगा, नैनो कार। नहीं, व्यक्ति है, व्यक्ति, उसने भी वो काम किया जो मैंने कहा, नेगेटिव एरिया को ब्लॉक किया। हाँ आया, आया आंसर। हाँ आ जाइए आ जाइए आ जाइए, राइट आंसर आ गया। जैक वॉल्श का दिया था, जी कंपनी का सीईओ था और उस कंपनी को, थैंक यू सर, ऑल द बेस्ट, जी कंपनी को वो टॉप पर ले गया था इसी एक फैक्टर के कारण, जो नेगेटिव एरिया थे उस कंपनी के वो ब्लॉक किए, बंद किए, और जो प्रोडक्टिव दे रहे थे उसको बड़ा किया और नए एरिया में इन्वेस्टमेंट किया, तो वो कंपनी वापस आ गई। अच्छा आगे बढ़ जाते हैं। चलो लास्ट फिनिश करते हैं, टाइम हो गया। तो उन एरिया में हम वेस्ट ना करें और उन एरिया को लार्ज करें जहां हमें चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं शॉपिंग नहीं करें, करें, पर प्लानिंग से करें जिससे टाइम वेस्ट कम हो। चॉइसेस को पहले ही अपने अंदर रखें, कौन सा क्या करना है। तो जो हमारा मेजर एरिया है उस पर हमारी एनर्जी जाएगी। आगे बढ़ रहे हैं। हाँ ये बता, छोटी सी जिंदगी है, हर बात में खुश रहो, जो चेहरा पास में नहीं उसकी आवाज में खुश रहो, कोई रूठा हुआ है तो उसके अंदाज से भी खुश रहो, जो लौट के नहीं आने वाले उन लम्हों की याद में खुश रहो, कल किसने देखा अपने आज में खुश रहो, खुशियों का इंतजार किस लिए दूसरों की मुस्कान में खुश रहो, क्यों तड़पते हो हर पल किसी के साथ को, कभी तो अपने आप में खुश रहो, छोटी सी जिंदगी है हर हाल में खुश रहो। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। 2 लाइन बजा दें, एक प्यार का नगमा है, खड़े हो जाएं। और गाना आप लोग, आपको गाना पड़ेगा, ये गीत बहुत अच्छा है, अंदर तक लाना और कहना आई लव यू, और अगर हस्बैंड वाइफ हैं साथ में एक दूसरे को कहें आई लव यू, करिए।